अध्याय 8 मसीही सेना संगठित करना। संगठन बेहद जरूरी। समय कम है और हमें अपनी सेना तैयार करना चाहिए एक बहुत बड़े काम को अंजाम देने के लिए। छोटे समूहों का गठन एक मसीही प्रयास का आधार मेरे सामने पेश किया गया है, उसके द्वारा जो कभी गलती नहीं करता। हर एक कलीसिया में कई मजबूत संगठित समूह हों, उन कामगारों के जो कलीसिया की भलाई के लिए परिश्रम करें। हर एक शहर में प्रभु की सेवा का एक संगठित समूह होना चाहिए जो अनुशासन से पूर्ण हो। एक या दो नहीं, किंतु कम से कम 20-20 लोगों का एक समूह हो जो काम करने को तैयार रहें। हमारी कलीसिया में ऐसे संगठित लोगों का समूह बनाया जाए जिसमें अलग अलग समूह के लोग एकजुट होकर मछुआरों की तरह मछलियां पकड़ने का परिश्रम करें तथा आत्माओं को प्रभु के खत्ते में इकट्ठा करें। उन्हें संसार के भ्रष्ट लोगों में से लोगों को चुनकर प्रभु यीशु के प्रेम से शुद्ध होने और बचाए जाने के लिए ले आएं। प्रभु यीशु की कलीसिया पृथ्वी पर सुसमाचार प्रचार करने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी, इसलिए प्रभु का मकसद था कि पूरी कलीसिया अपनी सारी ताकत, कम या अधिक, गरीब या अमीर, सब लोगों तक प्रभु की सच्चाई का संदेश पहुंचा सके। यदि कलीसिया में अधिक सदस्य है तो उन्हें अलग अलग समूह में विभाजित कर कलीसिया के काम के लिए ही नहीं बल्कि अविश्वासियों को सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार करें। एक के बदले दो या तीन लोग हों जो सच्चाई जानते हैं, उन्हें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। यदि अनुशासन और व्यवस्था युद्ध क्षेत्र में सफलतापूर्वक कामयाब होने के लिए जरूरी है, तो ठीक इसी तरह जिस संघर्ष में हम मसीही संलग्न हैं, जिसमें हमें सफल होना है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण और अपने आप में ज्यादा जरूरी है, जिसमें विरोधी ताकत उतनी ही प्रभावशाली तरीके से युद्ध क्षेत्र में तैनात हैं, ये संघर्ष जिसमें हम सब संलग्न हैं, क्योंकि उसमें परमेश्वर की अनंत काल की रुचि दांव पर लगी है, उसे जीतना अवश्य है। परमेश्वर नियम एवं व्यवस्था का परमेश्वर है। सभी वस्तुएं परमेश्वर की व्यवस्था, नियम एवं क्रम अनुसार है। संपूर्ण जवाबदारी एवं आज्ञाकारिता स्वर्गीय सेना द्वारा चलाई जाती है। सफलता केवल सही योजना क्रम तथा उसके अनुसार होने वाले कार्यों पर निर्भर है। परमेश्वर आज भी सभी से नियम एवं क्रमबद्धता से कार्य करना चाहता है, जैसे वो इज़राइल के समय में किया करता था। जितने भी आज प्रभु के लिए काम करना चाहते हैं, उनमें कार्य के प्रति समझदारी, सावधानी रखने और कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना है। वो अपना काम सही तरीके एवं भरोसे से करवा लेगा और उस काम पर उसकी छाप लगी होगी, ये बताने के लिए कि प्रभु यही चाहता है। कलीसिया में सभी काम सुनिश्चित योजना अनुसार होना चाहिए तथा सदस्यों को पता होना चाहिए कि प्रभु की सच्चाई की रोशनी लोगों तक कैसे पहुंचाई जा सके, और इस तरह वे अपना विश्वास भी मजबूत कर सकें और अपना ज्ञान भी बढ़ा सकें। जैसे ही वे अपना विश्वास, जो उन्होंने प्रभु से पाया है, दूसरों में बांटते हैं, उनका भरोसा और अधिक बढ़ जाता है और वे पक्के हो जाते हैं। एक सक्रिय कलीसिया ही जीवित कलीसिया है। हमें भी जीवित पत्थर की तरह रचा गया है और हर एक चट्टान को अपने विश्वास की ज्योति चमकाना है। हर एक मसीही की एक कीमती पत्थर से तुलना की गई है, जो परमेश्वर की महिमा की ज्योति ग्रहण करता और फिर दूसरों पर चमकाता है। सुदृढ़ कलीसियाई संगठन में शिक्षाएं। वो प्रभु योजना बनाता है कि हम व्यवस्थित और संगठित होना सीखें। उन दिनों जैसा जब मूसा के समय में एक खूबसूरत व्यवस्थित संगठन बनाया गया था ताकि इसराइलियों की संतान को लाभ हो। कलीसियाई संगठन का पहला कदम। पहले कलीसिया की स्थापना के पूर्व सर्वप्रथम 12 चेलों का अभिषेक किया गया था ताकि मसीह यीशु के जाने के बाद पृथ्वी पर प्रारंभ किए गए काम को आगे बढ़ाया जा सके। सर्वश्रेष्ठ नमूने के रूप में कलीसियाई संगठन यरूशलेम में परमेश्वर के भवन की स्थापना एक नमूने के बतौर अन्य स्थानों पर कलीसिया के संगठन हेतु काम में लाई गई, जहां सच्चाई व सुसमाचार प्रचार के लिए संदेशवाहकों ने लोगों के हृदय को परिवर्तित किया। बाद में प्रारंभिक कलीसियाओं के इतिहास में कई विश्वासियों के ऐसे समूह जगत में स्थापित हो गए जो आगे चलकर कलीसिया कहलाए। आगे चलकर ये संगठन पूर्ण रूप से स्थापित हुए, जिससे व्यवस्था और सामंजस्य बरकरार रखा जा सके। हर एक सदस्य अपना काम करने के लिए उत्साहित था। हर एक को अपने तोड़ों का बुद्धिमानी से इस्तेमाल कर अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। योग्य व्यक्ति की नियुक्ति उचित स्थान पर। प्रत्येक वह व्यक्ति जिसे एक उचित पद दिया गया है, उसे अपना सौंपा गया पद व काम करना है। हर एक को अपने पूरे मन से इस युद्ध क्षेत्र में कुछ भी काम करने को तैयार रहना है। इसका अर्थ केवल अनेक संस्थाएं, ऊंची ऊंची इमारतें या ऊपरी दिखावा नहीं है, किंतु परमेश्वर जो चाहता है वो ये है कि उसके विशेष लोगों में आपसी सहयोग व लगाव हो, क्योंकि वे परमेश्वर के चुने हुए हैं, कीमती हैं। हरेक को जहां वह है वहीं खड़े होकर सोचने, बोलने और काम करने कोताही न बरतें, बल्कि उनका सोचना, बोलना और करना सब में समानता हो, और तब तक हो जब तक काम पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो जाता। किसी भी सेना की ताकत उसके सैनिकों के पद और उनके शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक बल एवं योग्यता से नापी जाती है। एक बुद्धिमान सेनापति अपने अधिक अधिकारियों को हर एक सिपाही को प्रशिक्षित करने का आदेश देता है कि वे हमेशा सक्रिय हों। वह चाहता है कि हर दृष्टि से वे अधिक योग्य तथा काम करने की योग्यता हासिल करें। यदि वह इस काम को केवल अधिकारियों के भरोसे छोड़ देगा तो वह एक शक्तिशाली सैन्य संगठन बनाने में सफल नहीं होगा। वह लगातार उनकी हर एक कार्य प्रणाली पर पैनी नजर रखता है। उसका एक भी जवान वफादार व सेवा के लिए हरदम तत्पर रहता है। जो ऊंचे पद पर होता है उसके कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारी होती है। यीशु सुसमाचार प्रचार करने वालों को बुलाता है, कौन यह बुलाहट सुनेगा? सेना में जितने भर्ती होते हैं वे सभी सेनापति, कप्तान, सेना प्रधान या सैन्य अधिकारी नहीं होते। सभी अगुवे होने की जिम्मेदारी और चिंता का भार अपने ऊपर नहीं लेते। और भी कठिन काम होते हैं करने के लिए। कई लोगों को गड्ढे खोदकर खंदक बनाना, किले बनाना, किसी को संतरी का काम करना, संदेश वाहक होना आदि। जबकि कुछ बड़े अधिकारी होते और बाकी सारे अलग अलग पद के उनके अधीन काम करने वाले सिपाही होते हैं। इन सभी की सफलता हर एक सिपाही के अपने काम के प्रति वफादारी पर निर्भर करती है। कोई भी एक डरपोक या धोखेबाज आदमी पूरी सेना के लिए विनाश लाता है। सफलता का रहस्य। परमेश्वर के काम को सफलतापूर्वक करने के लिए प्रभु के सभी लोगों में एकता और सामंजस्य आपसी समझ का होना जरूरी है। उन सभी को पूरी तरह अपना ध्यान सौंपे गए काम पर लगाना चाहिए। प्रभु यीशु की कलीसिया का हर एक अंग प्रभु के लिए कार्य करने को तत्पर होना चाहिए। परमेश्वर द्वारा दिए गए सद्गुणों का इस्तेमाल सारी परेशानियों, रुकावटों को दूर कर कंधे से कंधा मिलाकर और एक मन, एकजुट होकर करना चाहिए। यदि मसीहियों को दुनिया के सामने कुछ करके दिखाना है तो उन्हें एक ही शक्ति के निर्देशन में, एकता की ताकत में जुटकर अपने उद्देश्य को पूरा करके पूरी दुनिया को सच्चाई बताकर बदल देना है।
स्वर्गदूत पूर्ण आपसी समझ से मिलकर कार्य करते हैं। उनके सद्गुणों का सुनिश्चित क्रम उनके कामों में झलकता है। हम जितनी नजदीकी से स्वर्गदूतों के कामों के अनुसार करने का प्रयास करेंगे, उतनी ही सफलतापूर्वक वे हमारे काम को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। यदि हम आपसी समझ के बिना अव्यवस्थित, अनुशासन रहित तथा असंगठित होकर काम करेंगे तो स्वर्गदूत, जो पूरी तरह सुनियोजित, सुसंगठित, उचित क्रमानुसार काम करने के आदि हैं, वे हमें अपने काम में सफलता दिलाने में मददगार नहीं हो सकेंगे। वे दुखी होकर वापस चले जाएंगे, क्योंकि वे असमंजस, बेमन, बिना योजनाबद्ध तरीके के संगठन को आशीषित करने के लिए नहीं ठहराए गए हैं। वे सब जो स्वर्गीय ताकतों व सहायता को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें उन्हीं की तरह सोचना, समझना व कार्य करना होगा। वे सभी जिनके पास प्रभु यीशु की ओर से एकता संबंध, उत्साह, क्रमबद्धता, अनुशासन और कार्य एक रूपता पाई जाएगी, तभी वे परमेश्वर की सेना की सहायता प्राप्त कर सकेंगे। और ये तो कभी नहीं हो सकता कि ये स्वर्गीय संदेशवाहक अपना सहयोग अनियमित, असंगठित एवं अव्यवस्थित योजना या काम को करने में अपना सहयोग करें। सही समय पर चेतावनी।
अब एक क्रमबद्ध तरीके से परिश्रम करने की आवश्यकता है। किंतु जहां आप में से कुछ लोग योजना बनाने, तैयारी करने और काम का बंटवारा करने में इतना लंबा समय लगा रहे हैं कि शैतान, जो सबसे बड़ा धोखेबाज है, अपनी भटकाने वाली कहानियों से लोगों को ध्यान सच्चाई की बातों से हटाकर धोखे से लोगों के हृदयों पर अपना प्रभाव डाल रहा है। और शैतान कितना खुश होगा यदि वह इन लोगों के बीच में पहुंचने में सफल हो जाता है और एक एक करके इनके संगठन को बिखेरने का काम करने लगे। जबकि सुदृढ़ कार्य नियोजित संगठनों की बहुतायत से जरूरत है। शैतान इन लोगों को ऊपर उठने से रोक देगा और परमेश्वर के वचन में गड़बड़ी डालने का भरपूर प्रयास करेगा। तब हमें अपने विश्वास में बने रहने की आवश्यकता है, ताकि हमारी कलीसिया की कार्यप्रणाली के संगठन और क्रमबद्धता, जो बड़ी मेहनत व बुद्धिमानी और सावधानी से बनाई गई है, पर कोई प्रभाव न पड़े। उस बिगाड़ने वाले तत्व को किसी भी तरह अनुमति न दी जाना चाहिए, जो इस समय हमारे परिश्रम को अपने चंगुल में फंसाकर अपने लिए इस्तेमाल कर सके।